لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیو، آپ نے آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک ابھی تلاوت سماعت فرمائی. یہ سبق ہم نے پچھلے ہفتے اس کو جو ہے وہ پڑھنا تھا، میری مصروفیت کی وجہ سے، بیرونی ملک ہونے کی وجہ سے یہ انتظام نہیں ہو سکا. ہم نے اس کی کوشش کی تھی کہ یہ جاری رہے، لیکن سمحاؤ یہ نہیں کام نہیں کیا اس نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو آج ہم جو ہے سبق کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے جان لیں کہ یہ ابھی آیا آپ کے سامنے، جو تیسرا رکوع ہے اس کے کچھ حصہ، اور آگے تھوڑا سا چوتھے رکوع کا کچھ حصہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، سات آیات ہیں، تو ان سات آیات کا کچھ آپ کو اندازہ ہوگا ظاہر معنی کے حساب سے یہاں پہ کیا مضمون بیان ہوا ہے، اور پھر اس مضمون کے اس ان آیات میں کے اندر کیا مضمون ہے. تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پورا ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ حالات کی اب تفصیل آ رہی ہے جن سے کفار و مشرکین کو آخرت میں سابقہ پیش ہے. تو ابھی سے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے اس دنیا کے اندر کہ جو بھی اخلاص سے تہی دامن اعمال کرے گا انسان، یا انسان جو کرتا ہے دنیا کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے راکھ کی سی، کہ راکھ جو ہے وہ بالکل اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو آندھی جو ہے وہ اڑائے پھرتی ہے ادھر سے ادھر، اور تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہو تو بھی بے نام و نشان ہو کے جو ہے مٹ جاتا ہے. تو پھر اس کی مثال جو ہے دی ہے کہ کفر اور شرک کے اوپر رہتے ہوئے اعمال اسی طرح رائے گاہ چلے. پھر جو ہے ایک اور جو ہے اسی مضمون کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر مضمون ہے کہ قیامت کے روز جب ہر چیز سے پردہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا، ہر چیز انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، حقیقت کو دیکھ لے گا، تو پھر اپنے لیڈروں کی اندھی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر لعنت کریں گے جن کی بدولت وہ جہنم تک آ پہنچے. اور کیونکہ یہ سب سے بڑا لوگوں کو جہنم تک لے جانے والا تو جو کہ شیطان ہوگا، تو وہ بھی اس کی بھی جو ہے ایک سیناریو اور ایک سین موجود ہے کہ وہ بھی لوگ اسے بھی جو ہے لعنت کرنا چاہیں گے، تو وہ بھی اپنے پیچھے چلنے والوں سے برات کا اظہار کرے گا. اور پھر اس کے مقابل جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کفر اور اہل شرک کے مقابل وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں باغات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، ان کے لیے مبارک سلامت کی صدائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. یہ مضمون جو آج کے جو آیات ہیں 18 سے 23 تک، اس کے اندر یہ پیش کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کا جو مطالعہ کریں. اچھا، یہ جو پہلی آیات ہے یہ دراصل جو ہے پچھلے جو سبق ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو ظاہر سبق کی جو بھی ہماری لمیٹیشن ہے اس کے اس وجہ سے ہم اس کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا وہ جو ہے مقام تھا جہاں پہ جہنم میں والے لوگ کو کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے گا، تو وہاں پہ آخری آیت من ورائی جہنم اور یسکا من مائے صدید، اس کے پیچھے بتایا جہنم ہے اور وہ پیپ والے پانی سے انہیں پلایا جائے گا، یعنی وہ جو ان کو پانی جو ہے وہ دیا جائے گا. اب اسی کی کنٹینیوشن ہے آگے جو ہے وہ جاری رہے گا. فرمایا یعنی یہ جو تجرہ جو لفظ تجرہ جو ہے یہ اسی پانی سے متعلق ہے جو اس والا ہے پانی جو پیپ والا پانی ہے. فرمایا یہ تجرہ جو ہے، یا پہلا یا تو جو ہے وہ ہے یا سیکنڈ پرسن والا ہے وہ، تو جرا جو ہے جرا تجرا سوری آگے جو تا ہے یہ تفاعل باب تفاعل والا ہے جو ففتھ فارم ہوتی ہے، تجرا جو تجرا और इसका मसलर होता है तो जर राउंड, घूंट घूंट कर, घूंट घूंट पीना इसी चीज को, सिप बाय सिप जो है यानी। और इसके जाहिर इसके फिर एक और भी पीने के लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो पीने के लिए भी जो है वो डिफ्रेंशिएशन है अरबी के अंदर। तो अगर घूंट घूंट पीना है तो जर रहा है, और अगर जो है एक ही दफा घटा घट पी जाना है तो उसके लिए जरा जो है, ये जरा वो जरा ये जरा, ये जो है लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो दोनों में जो है फर्क है, पहली फॉर्म जो है वो ये है कि घटा घट पी जाना, पांचवी फॉर्म ये है कि इसको घूंट घूंट करके पीना। तो इसी फिर जो है जुरआ, जुरआ जो है एक घूंट के लिए, सिंपल एक सिप जो होता है उसके लिए जो लफ्ज जो है वो जुरआ। और ये तजर्रा जो है ये हमारे लिए उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। इत्तेफाक से देखेंगे जो उर्दू में इस्तेमाल लफ्ज नहीं होते, कुरान मजीद में भी रेयरली इस्तेमाल हुई, जो कुरान मजीद में एक ही जगह से वला यकादो, यानी वो फरमाया कि वो ऐसी चीज होगी जाहिर है वो पीप पानी पीप का और तो बदबूदार होगा सख्त, तो वो अल्लाह ताला से इंजाम से महफूज फरमाया हमें, वो बहुत ही उनको मुश्किल होगा, उनको पीना उनके लिए मुश्किल होगा, जाहिर वो पी उनको प्यास होगी और जहन्नम की आग होगी और तपिश होगी उनको, वो जो है वो ये वो कोई चीज भी लिक्विड देखेंगे तो उनको ये पीने के लिए दिए जाएगा, उसको पी नहीं सकेंगे। वला यकादु और ना करीब होगा। अच्छा ये जो लफ्ज है ना कादा जकादू, कादा असल लफ्ज तो कादा है, फिर जकादू वो दे के मानो के अंदर प्लूरल, तो वो जो है वला और ना होंगे जकादू करीब, युसीगु इसके कि वो उतारे उसको हलक से उतारना, हलक से उतारने के लिए ये आता है फिर जो लफ्ज आता है सागा, पहले कादा के बारे में जो है। अच्छा किसी वर्ब के साथ अगर कादा को लगा दिया जाए लफ्ज, तो फिर वो होता है कोई लफ्ज किसी काम के करीब होना, करीब होना, लेकिन वो काम अभी ना करना, तो करीब होना जो है उस काम के बिल्कुल करने के करीब होने के लिए ये लफ्ज जो है ना कादा जो आता है। आपको याद होगा आपने जो है हमने पढ़ा है बारे में, हम पढ़ते भी रहते कि बनी इसराइल जो थे वो उन्होंने जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह ताला ज़िबह करो गाय को, आपको पता है कि उन्होंने जो है वो बीसियों बहाने किए, और पका बहाने इसलिए किए कि वो जो है वो नहीं करना चाहते थे ज़िबह जो है वो गाय को। तो फिर बिल आखिर जब बिल्कुल कॉर्नर कर दिया अल्लाह ताला ने उनको, बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता दिए कि ये वाली जो है गाय का, तो फिर अल्लाह ताला ने उस पर फरमाया कि उन्होंने जब फिर जाहिर आपको कोई चारा ना बचा, उन्होंने ज़िबह कर दिया गाय को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फसबहूहा, फसबहूहा, उन्होंने पस फिर उसको जिबा कर दिया जो है गाय को जो है, वमा कादू यफलून, और वो करीब न थे इसके, लगता ना था कि वो इसे जिबा। तो ये जो है उसकी एक अच्छी मिसाल है कादू कादू की, वो ला ला के साथ आ गया, और ये ना था करीब कि वो उसको हलक से उतारे, यानी करीब भी ना होगा कि वो हलक से उतारे, क्योंकि जाहिर है चीज जो है उतरती नहीं होगी। असागा उसी वो सागतन हलक से उतारना, उंडेलना के मानों के अंदर आता है, जो है। और ये भी बाय द वे उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता ये लफ्ज भी, वरना तो आपको पता है कि एक सफे के ऊपर तकरीबन बेशतर अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, और ये भी उन अल्फाज में से है जो कुरान मजीद में एक ही दफा इस्तेमाल हुआ, ये भी हलक से उतारने के लिए भी वाहिद हुआ, बहुत ही निदेह वो याती हिल मऊतो जाती, और आएगी और आएगी अल मौत, मौत उसको आता जाती, जैसे मैं कहता हूँ ये हर सफे भी कुरान मजीद के लफ्ज जो है मिल जाता है, मिन कुल्ले मकान, हर मिन कुल्ले हर एक से मकान जगह, हर तरफ से हर जगह से जो है उसको मौत उसके पास आएगी उसके पास। वमा हुआ बे मैयत, अंदाजा कीजिए वमा हुआ और ना होगा वो बे मैयत, वो मैयत वो मरने वाला ना हो, वो मुर्दा ना हो, मौत उसके पास आएगी, यानी ऐसे होगा कि जहन्नम की आग है और अजाब है और ये सारी चीजें हैं उसके पास, इस मौत आएगी लेकिन उसको वो जो है मरेगा नहीं। वमिन वरा ही, और उसके पीछे जो होगा वरा। अच्छा वरा का जो लफ्ज है इसके बारे में जान ले, ये ज़र्फ़े मकान है, ये डिनोट करता है जगह को, मकान इसी ज़र्फ़े मकान है, तो ये पीछे के मानों के भी इस्तेमाल होता है, आगे के मानों में भी इस्तेमाल होता है, सामने के मानों में भी इस्तेमाल होता है, पहले के मानों में भी इस्तेमाल होता है, समथिंग हैज पास्ट अर्लियर उसके मानों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये तो इन तमाम मानों के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट के अतबार से इसके मानी जो की जा सकती, और उसके पीछे होगा क्या होगा, अजाबुन अवलीस, बड़ा सख्त ही सख्त अजाब होगा। ये जो गलीज है उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये थोड़े सा नेगेटिव सेंस में उर्दू में इस्तेमाल होता है, अरबी की मैंने इसका मतलब होता है गलजतन से, ये है इसका मतलब है बहुत सख्त और बहुत शदीद। मसलुल्लज़ीना उन लोगों, मिसाल मसल जो है मिसाल, मिसाल उन लोगों की, कफर जिन्होंने कुफर किया, फिर अपने रब से, ये साफ बिल्कुल सादा है। आमालुहुम उनके अमाल जिन्होंने कुफर किया, जो कुफर पे हैं उनके मिसाल, उनके अमाल की मिसाल किस लिए है, करमादिन राख की तरह है, उनकी मिसाल जो है राख की तरह है। किरमाद जो है ये रमदा जरमेदो रमदन आग का बुझ का ठंडा हो जाना, राख हो जाना, ये भी रेयरली यूज वर्ड है कुरान मजीद के अंदर, नहीं इस्तेमाल हुआ। तो अच्छा रिमाद जो है वो फिर राख के लिए इस्तेमाल हुआ, कुरान में सिर्फ इसी जगह पे इस्तेमाल हुआ रिमाद। निश्तद्दत, निश्तद्दत जो है, अच्छा ये निश्तद्दत इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये देख लें, कुरान मजीद में, हमारे कुरान मजीद में ये दरमियान में एक छोटा सा नून जो है वो नूनी कुतनी लिख दिया जाता है, और ये
तो
इसका
ठीक है ना,
मतलब ये होता है कि असल में ये लफ्ज जो है आमालुहुम करमादिन है, ये तशदीद है दाल के नीचे। अब अरबिक कुरान जो यहाँ पे जो मौजूद होता है, जो आप देखते हैं मसाजिद के अंदर, उसमें ये लफ्ज करमादिन दाल के नीचे दो जो है वो जेर है यानी तनवीन है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसलिए कि अगर इसको रुकेंगे तो करमाद पढ़ेंगे, और फिर आगे जो है इसको जब इसके साथ आगे पढ़ना चाहे मिला के, क्योंकि तो फिर निश्तद्दत पढ़ेंगे, क्योंकि नून जो है तनवीन का, ये नून तनवीन का होता है, जो जो है वो पीछे वाले जो हर्फ होते हैं जैसे दाल वहां से लिए होते हैं। निश्तद्दत बेहर्री, तो निश्तद्दत जो है ये शद्दा शीन दाल दाल जो लफ्ज है शद्दा, इश्तद्दा ये बाबे इफ्तआल है, इट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इश्तद्दा का मानी होता है जो है इश्तदाद, उनसे सख्त होना, तो बहुत सख्त जो किसी कोई चीज जिसकी क्वालिटी है खसूसियत है यानी सिफ्त है, इश्तदत बेहरी चले उस पर चली उसके साथ हवा यानी उस राह के ऊपर चली बहुत तेज शदीद हवा, और रीह जो है हवा के लिए इस्तेमाल होता है। फी योमिन आसिफिन, फी योमिन एक ऐसे दिन में, आसिफिन जो आसिफ जो आंधी वाला है, आंधी वाला दिन है। अच्छा री जो है वो आम हवा होती है कोई भी हवा, और जो आसिफ होती है वो आंधी वाली हवा होती है बहुत तेज हवा होती है, वो खास तौर पर इसकी खसूसियत है। आसिफ उस हवा को कहते हैं जो चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, राख को, मतलब तिनकों को, और जो चीजें आम पड़ी होती हैं उन चीजों को उड़ाए फिरे, वो जो आसिफ है। यानी एक ऐसे दिन में, एक दिन वाले दिन में जिसमें आंधी हो और उसमें बहुत तेज हवा हो। ला जग दे रूना वो कदरा रख दे, कुदरत रखना वो नहीं कुदरत रखेंगे, मिम्मा उसमें से जो, वो कुदरत नहीं रखेंगे उसमें से जो, कसबू जो उन्होंने कमाया, अला शय कुछ भी जरा भी किसी चीज पर भी यानी जो उन्होंने कमाया। अच्छा ये जो कसब लफ्ज है ये जो है इसका इतलाक जो है दो, एक दो देखें, अगर तो अमाल है मसलन, ठीक है अमल है, इंसान ने कोई अमल किया है, अच्छा किया बुरा किया है, उसके लिए भी कसब इस्तेमाल होता है। अच्छा कि इंसान ने मजदूरी की है, ठीक है, तो फिर जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे फरमाया कि अलकासिब हबीबुल्लाह, यानी कसब करने वाला, कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, मजदूरी करके कमाने वाला जो है अल्लाह का हबीब दोस्त होता है। तो ये दोनों पे इतलाक होता है, क्या इंसान को अच्छा बुरा अमल कमाए उसके नतीजा कमाए यानी, या फिर मैंने मजदूरी करके जो है कुछ कमाए, दोनों के लिए कसब। तो उन्होंने जो कुछ भी कमाया जिन्हें जो अमाल किए जाहिर है उनके, उसका कुछ भी जरा भी कुदरत न होगी। जाले का ये है वो हुआ, जाले के ये है वो अद-दलालुल बईद, दलालत बहुत दूर की, बहुत दूर की गुमराही है ये। इसका तर्जुमा कर सकता हूँ।
जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा, मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी, मगर वो मरने ना पाएगा और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, उनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वो अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमराही है।
अब ये जो मामला ये जो आयात है, देखें कि ये आयात करीमा जो है दुनिया में इंसान ने जिंदगी में जो रास्ते अख्तियार किए और फिर उसके नतीजे में जो भी इंसान ने अमाल किए हैं और उसका जो भी नतीजा आएगा उसकी हकीकत के लिहाज से कुरान मजीद की एक अजीम आयात। और क्योंकि ये इंसानी जिंदगी के रास्ते यानी जो इंसान जिंदगी में अख्तियार करता है और फिर उसके नतीजे में जो उसको अंजाम जो उसका होने वाला है उसकी तरफ ये जो है रहनुमाई करती है, तो इस नजरिए और इस अजीम हकीकत को कुरान मजीद में जो है वो दूसरी जगहों पे भी बयान फरमाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ईमान जो है वो लाजमी और बुनियादी शर्त। यानी ये आप ये वो मकाम है, आप इसको अच्छी तरह जान लें कि लोग अक्सर जो है इसके बारे में सवाल भी करते रहते, पूछते रहते भी हैं। ये दुनिया में बहुत एक देखे जाने वाला नॉमिना भी कह सकते हैं आप है कि जो है वो लोग इसी तरीके से गैर मुस्लिम्स भी होते हैं, ईमान कबूल नहीं करते लेकिन जो है बड़े बड़े अच्छे ने काम करते हैं, बड़े फायामा के काम करते हैं। तो वहां इस बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाजे बता दिया कि ईमान जो है अल्लाह ताला के अमल की कबूलियत के लिए लाजमी तौर पर शर्त जो है वो ईमान है। और इसको जो है ये एक हद मेयार कह ले, कम से कम जो है ये हद मेयार है, ये थ्रेश होल्ड है। इससे नीचे फिर अगर कोई शख्स जो है वो जितने अमाल करता फिरता है करोड़ों अरबों खरबों जो है लगा देता है चैरिटी पे और ये करता है काम करता है तो उसके अमल का कोई वजन अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है। ये अलग ये बात है कि अल्लाह ताला उसे जो है उसे दुनिया के अंदर इस क्योंकि जाहिर है वो आखिरत को तो मानता ही नहीं है और ना आखिरत के हवाले से उसने कोई काम किया है, लिहाजा उसको जो आखिरत में अमल उसका अजर देना तो जाहिर है ये एक अकल और मंतक से बेहतर बात। तो इस दुनिया के जो उसने किया है तो अल्लाह ताला इस दुनिया में उसको जो है उसको जो जरूर हिसाब दे देता है लेकिन बहरहाल उसको दुनिया आखिरत के अंदर जो है उसका कोई वजह नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया वल्लजीना कफरू अमालहुम कसराबिन बकीयतिन यहसबुहु ज़ुमआनु मान हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदु शैया। सूरह नूर में इरशाद फरमाया जिन्होंने कुफर किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दश्ते बेआब में सुराब कि प्यासा उसको पानी समझे हुए था मगर जब वहां पहुंचा तो कुछ नहीं। आपको पता है ये मिराज जो होता है जो सुराब पानी लगता है लेकिन तो पानी होता नहीं है जब इंसान पहुंचता है वहां पे तो फिर वो वहां पे कुछ भी नहीं हो। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कदिमना इला मामिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबा अम मंसूरा। और उन्होंने जो भी अमाल किए होंगे तो उन्हें लेकर हम गुबार की तरह उड़ा दें, उनकी परेखा के बराबर भी उनका वजन ना हो। अल्लाह जो है वाजे तौर पर फरमा दिया कि तमाम इंसान ख्वाब खुदा को मानने वाले हूं मुल्हिदीन हूं या एक मजहब के मानने वाले हूं या किसी दूसरे मजहब के सेकुलर लोग हूं या महज अखलाक चंद अखलाकियात के मजमू को मानने वाले हूं, सबके यहाँ नेकी का एक तस्वर मौजूद होता है, चोरों के यहाँ नेकी का एक मौजूद है, डाकुओं के यहाँ एक तस्वर मौजूद होता है, हत्ता की जो तवायफे होती है उनके यहाँ भी जो है नेकी का एक तस्वर मौजूद होता है। आप देखते हैं कि वो फिर न्याजे और सबीले हैं और ये जो है किसी को जो है वो पैसे देती हैं और सदके के तौर पर इस तरह। तो इसलिए कि नेकी जो है वो जो है इंसान में मौजूद रूह की जरूरत है लाजमी तौर पर, लेकिन नेकी का हर एक लोगों का चोर के नेकी का एक और मेयार है और डाकू का एक और मेयार है, वो डाके डाल के भी कहीं के नहीं कि अपने आप की जमीन को मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं भी जो है ना वो दे देता है, लेकिन नेकी का मेयार अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया है कि नेकी वही कब वो होगा कबूल वही होगी जिस जो मेयार अल्लाह ताला ने जो है ना कायम किया। इंसानी अमाल की नेकी का शुमार सिर्फ ईमान के दायरे में कदम रखने के बाद ही होगा, ये अल्लाह बात बताएगी और ये बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। इस दायरे से बाहर अपने तई खा को कितना ही बड़ा नेकी का अमल करे वो जो है वो काबिल कबूल ना होगा। तो ये अल्लाह ताला ने कुफ्र और शिर्क के रास्ते पर किए गए अमाल की तफसील बताई हम। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये सवाल अक्सर बेशतर उठता रहता है इंसान को जो है इसका पता होना चाहिए। जिन लोगों ने भी अपने रब के साथ नमक हरामी की वफाई की, खुद मुख्तियारी की, नाफरमानी और सरकशी की रफ्त इख्तियार की, और इताअत और बंदगी का वो तरीका जो अल्लाह ताला ने बताया है अम्बिया अलैहिस्सलाम के जरिए से, उसको जो है वो इख्तियार करने से इनकार किया है। उनका पूरा कारनामा हयात, उनके सारी जिंदगी के सरमाया जो है वो बिल्कुल लाहासिल है और बेमानी है, और वो गोया एक ऐसा राख का ढेर है जो इकट्ठा होकर मुतदर रास में बहुत बड़ा भारी टीले सा बन गया, मगर एक ही दिन की आंधी ने जो है उसको उड़ा दिया और उसको एक एक जरा जो है मुंतशिर कर दिया। तो ये जो है वो बात बताई अल्लाह ताला ने, ये तफसीर बयान दी कि उनका जो है देख लें ये शानदार तमद्दुन, पुरफरे तहजीब, हर तंगे सनतें, जबरदस्त सल्तनतें, आलिशान यूनिवर्सिटियां, उलूम फुनून और अदब लतीफ और कसीफ के जखीरे, उनकी इबादत गाहें, उनकी जाहिरी नेकियां, उनके बड़े बड़े खैराती और रिफाई इदारे जिन पर वो फख्र करते हैं, सब के सब आखिर राह का एक ढेर साबित होंगे, जिसे जो है कयामत की जिस दिन जो में कयामत की आंधी बिल्कुल साफ करके रख दी, यानी जिस दिन कयामत कायम होगी तो हर चीज जो है वो सिफर जो है ना हो जाएगी, वो सिफर से जरब खाएगी और सिफर ही हो जाएगी, और आलम आखरत में एक जरा भी उनके पास इस लायक ना होगा कि वो उसे खुदा की मिजान के अंदर जो है वो रख कर कुछ वजन पा सके। जिन लोगों ने ईमान की बुनियादी लकीर को पार ही नहीं किया मगर दुनिया में बड़े बड़े रिफाई काम किए, तो फिर उनके बारे में ये जैसे मैंने कहा कि सवाल होता है, तो फिर जो उनके नेक अमाल का क्या होगा, क्या उन्हें कोई जजा मिलेगी कुरान मजीद ने इस मकाम पर? और इन आयात के अंदर जो है बिल्कुल वाजे तौर पर बता दिया है कि नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर भी, सूरह फुरकान के अंदर भी वाजे तौर पर जो है ये बिल्कुल बात बता दी गई है, ईमान से, ईमान के बगैर उनके किसी अमाल का, चाहे उनकी डोनेशन जो है वो अरबों डॉलर के अंदर हो या खरबों डॉलर के अंदर, उसकी कोई वजन कयामत के रोज जो ना होगा। अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लिए ईमान और अखलास जो है बुनियादी और लाजमी जरूरियत है, जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मोमिन पर उसकी नेकी के मामले में जरा भी जुल्म ना करे, उसको उसकी नेकी का बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा, और काफिर ने जो अच्छे अमाल किए होंगे उसके लिए उसको उसके नेक अमाल का बदला दुनिया ही में दिया जाएगा, जहां तक कि जब वो आखिरत में पहुंचेगा उसकी कोई नेकी बाकी ना होगी जिसका अपने जो है वो रब से या जो है वो बदला दिया जा सके। तो ये जो है वो अब बात बताइए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने कभी हदीस मुबारक फरमाती है कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने जुदान जमाने जाहिलियत में इस्लाम से कबल जो है हालत कुफर में बड़ी सिला रहमी करता था, मस्कीनों को खाना खिलाता था, तो क्या उसके उसके किसी जो है इस अमल का फायदा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम उसे कोई फायदा ना देंगे, क्योंकि उसने कभी ये नहीं कहा कि रब्बिग़फिरली ख़तियती यौम अद्दीन, ए मेरे रब मुझे, यानी आखिरत का हवाला नहीं किया, अपने रब से मोहब्बत तलब नहीं की, ए मेरे परवरदिगार क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, यानी ईमान नहीं लेके आए कोई जो है गुनाहों। आगे फरमाया अलम तर अन्नल्ला, अलम आ हरफे जो है वो इस्तफहाम है, लम नहीं हरफे नफी है, क्या नहीं तरा तुमने देखा, ये रा आज रा से है, अन्नल्ला के अल्लाह ताला, क्या तुमने देखा नहीं, यानी गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला फलक समावात, अल्लाह ताला ने फलक किए समावात को, आसमानों को, वलार्द जमीन को, बिलहक हक के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया, यशा जुज हिब को इन, असल में लाभ इन है, अगर शर्त है, अगर यशा जुज हिब को, यशा वो चाहे, अगर वो चाहे, यशा वो चाहे जुज हिब कुम तो ले जाए तुमको, तो वो ले जाए तुमको, ये अजहबा जुज हिबु इजहाबन, ले जाना जुज हिबु ले जाना, अगर तो वो ले जाए तुमको, यानी तुम पूरी तुम लोगों को, तुम उम्मत को, तमाम मजमूए को, इंसानों को, वो याती और ले आए, बेखल खलक को और नई खल को, मखलूक खलकिन जदीद मखलूक को, नई खल को, नई मखलूक को ले आए, वमा जालिका और नहीं है ये, वमा और नहीं है जालिका ये अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर बेअजीज कुछ भी मुश्किल। अच्छा ये अजीज का मतलब मुश्किल नहीं होता, आपको पता है अजीज का मतलब होता है गालिब कवि जबरदस्त, यानी ये अल्लाह ताला के ऊपर कोई जबर ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला कर ना सके, और अजीज का मतलब होता है वो जात जिसके ऊपर कोई गालिब ना हो। तो जाहिर इस मानों में फिर जो है मुश्किल किया गया है कि ये अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर गालिब है, उसके ऊपर कोई गालिब नहीं, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये तर्जमा है। तो अगर ये तर्जमों के अंदर ऐसे अल्फाज हों तो आप जो है असल लफ्ज को देखकर कीजिए किसके मानी क्या है। वबरजू लिल्लाह जमीन, वबरजू जो है पेश होना होता है, वबरजू और पेश होंगे लिल्लाह अल्लाह पर, या अल्लाह के सामने जमीन कुल के कुल सब सब अल्लाह के सामने जो है वो पेश होंगे। बराजा जब रोजो रोजन खुली जगह पर जाते। तो ये लफ्ज जो है इसकी थोड़ी सी आप एक तफसील इसकी ये भी है कि ये उर्दू के साथ इसका एक कनेक्शन है, और थोड़ा सा दायरे आम थोड़ा सा एक हिडन कनेक्शन है, तो आप उसको देखें। अच्छा, बराजा का मतलब होता है खुली जगह पे मैदान में जाना, जाहिर होना, पेश होना, या खुली मैदान में अगर आया इंसान आए तो जाहिर किसी के सामने पेश हुआ तो खुले मैदान में ये जाहिर होना भी इसके मन में आता है। अच्छा, फिर खुली इसके मतलब खुली जगह पर, यानी इसके जो जो बाब इतफाउल होता है तबर्रजा, खुली जगह पर जंगल की तरफ जाना, खुली जगह पर जाना जंगल की तरफ जाना, तो उसमें है कजाए हाजत के लिए जाना, यानी खुली जगह पे या जंगल में जो है कजाए हाजत के लिए जाना। तो आपको पता है पुराने जमाने में लोग जो है शहर से बाहर खुली जगह पे या जंगल में या थोड़ी सी हिडन जगह पे जो होती थी वहां पे जाते थे, तो कि जाय हजरत। तो इसी से फिर यानी बरजा से जो इसकी फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की, उसमें जो है तबर्रजा के जाय हजरत के लिए जाना, उसी से फिर लफ्ज जो है अरबी में भी और उर्दू में इस्तेमाल होता है बराज। आपको पता है बोलो बराज, बोल जो पेशाब को कहते हैं, बराज पखाने को कहते हैं। तो जाय हजरत मतलब है जाय बराज का, उसी से फिर ये निकल लफ्ज है। अच्छा, फिर इसी को लफ्ज भी है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है ताकि आप इसको जान सके। जंग में आपको पता है जंग जब होती थी तो जंग शुरू होने से पहले जो है दावत मुबारजत दी जाती थी। दावत मुबारजत ये होती थी डुअल लड़ाई, जो दू बदू दो अफराद की लड़ाई होती थी जो है वो भी इसके मतलब खुले मैदान में लड़ना, आम जो है वो दावत देना, तो उसको मुबारजत कहते थे। तो उर्दू में ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे तमाम जो जंगी किस्म के नावल होते हैं जिनमें जंगों का जिक्र होता है, या फिर जो मखाजी और सीरत की किताबें उनके अंदर भी इस लफ्ज के इस्तेमाल। फकाला, अच्छा ये सब फरमाया अल्लाह ताला के सामने सब पेश होंगे, तो क्या मंजर होगा फिर? फकाला तो कहे तो कहेंगे जो है फिर कहेंगे दुआफा। तो दुआफा जो है ये वही उर्दू में जो जईफ की जमा, आपको पता है दुआफा उर्दू में भी जईफ की जमा है दुआफा, तो जईफ लोग जो है वो कहेंगे। अब जईफ लोग उर्दू में हम आमतौर पर जईफ का मतलब वही है जो अरबी में भी है, जो आमतौर पर जईफ में ये भी मुराद होता है कोई बूढ़ा शख्स है तो वो भी जईफ है, लेकिन जिसके अंदर कुवत ना हो, कुवत फिर फैसला ना हो, कोई जो है उस लिहाज से भी वो शख्स जईफ है। तो कुरान मजीद की ये खास इस्तेला है यहाँ पे इस मौके के लिए, ये दुआफा। ये दुआफा कौन होंगे? वो लोग जो दुनियावी लीडरों, पुरोहितों, पीरों, पादरियों के पीछे बगैर सोचे समझे चलते हैं। कुरान ने उन्हें ज़ईफ कहा है, और यहाँ पे सिर्फ नहीं कहा, कुरान मजीद ने चार पांच जगहों के ऊपर जो है इनको लोगों को ज़ईफ कहा कि वो लोग जो अंधाधुन अपने जो लीडरों के पीछे चलते थे, कुरान मजीद ने उन्हें जो है दौफा कहा है। और ये रेफरेंस आपको आप देख सकते हैं कि इनको जो है मौजूद है कुरान मजीद में चार जगहों के ऊपर। ये जो ज़ईफ लोग होंगे, ये फॉलोअर्स होंगे, ये पैरो होंगे, ये कहेंगे लिल्लदीन उन लोगों से नस्तकबरू जो बड़े बने, जो बड़े बने थे या बड़े दुनिया में जो लीडर थे बड़े बने थे आगे थे। इन्ना कुन्ना लकुम तबा, इन्ना बेशक हम कुन्ना थे हम लकुम तुम्हारे लिए तबा पीछे, तबा इत्तबा करने वाले, हम तो तुम्हारे पीछे थे, ताबे थे तुम्हारे। तब अन जो है, ये जो तब अन है ये ताबे उनका की जमा है। ताबे ताबे आपको पता है वाय पीछे चलने वाला, और तबान पीछे चलने वाले ताबे लोग। वो कहते कि हम तो भाई तुम्हारे ताबे थे, पीछे चलने वाले थे। फहल अंतुम मुगनून, फहल पस तो क्या, फहल क्या अंतुम तुम मुगनून अन्ना, मुगनून अन्ना तो काम आने वाले हो हमारे। अच्छा, मुगनून इसमें असल वो लफ्ज है जो समझने की है, तो ये अगना जुगनी अगना, आपको पता है गनी से जो है अगना जुगनी गना काम आना, सी जो है वो चीज, कोई ऐसी चीज दे देना माल दौलत दे देना, कोई कुवत दे देना, कोई ऐसी चीज जिससे कोई चीज आपका काम बना, बस रुका हुआ काम जो है निकल जाए। उसी से फिर गनी भी होता है वो, जिसके पास बहुत माल हो उसके अगना जो है काम आना, तो वो कहेंगे कि आज कुछ तुम्हारे फिर काम आओगे, मुगनी काम आने वाला है, सब फाइल है उसकी जमा, मुगनून आया है यहाँ पे, तो तुम कुछ काम आने वाले हो, अन्ना हमारे हमसे हमारे, तुम कुछ हमारे काम आने वाले हो आज फिर हमसे हमारे, मिन अजाब अल्लाह के अजाब से इन बचाने के लिए, अल्लाह का अजाब तो हम फेस कर रहे हैं, हम सामना है हमारे, तो हो हमारे बचाने वाले, मिन शैन कुछ भी जरा सा भी, पालू तो वो कहेंगे लो हदा ना, लो अगर हदा ना, अगर हिदायत पाते हम अल्लाह, अगर हिदायत देता हमें अल्लाह, ये नहीं ला हदई ना कुम, ला पास जरूर हदई ना, हम हिदायत देते कुम तुमको, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें हिदायत देते, यानी हम खुद ही जो है ना मुजिल थे, हम खुद ही जो है वो जलालत में थे, सवा उन बराबर है, अलैना हमारे ऊपर हमारे लिए यानी बराबर है, अजजे ना जो है ये हम, अगर ये वही लफ्ज है जिसे उर्दू में कहते हैं जजा फजा करना, शोर मचाना, हम जो है वही, इसीलिए मैंने जजा फजा से तर्जमा कर दिया कि वही करीब तरीन है लफ्ज, बराबर है हमारे लिए का हम कोई शोर मचाए जजा फजा करें, ठीक है, ये जजन वावीले करना, जजा फजा करना उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम सबर ना या फिर हम सबर करें, हम शोर करें या फिर हम सबर करें, हमारे लिए बराबर है, वमा लना वमा लना सर, मा नहीं है लना हमारे लिए, मिन महीस कोई बचने की जगह, हम बच इस लफ्ज महीस को पहले जो देख आए थे, हासा जहीसो हैसन बचना बच निकलना, यानी बच निकलने की हमारे लिए कोई जगह नहीं है, महीस बचने की जगह, साथ ही कोई इससे बचना,
क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए, ऐसा करना उस पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, तो उस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमजोर थे, वो उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें भी दिखा देते। अब तो यकसां है, खा हम जजा फजा करें या सबर, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं।
जजाकल्ला। अब इसके आप जैसे मैं आपसे जो है वो कहता रहा हूं कि आप कोशिश किया कीजिए कि जब ये आपके सामने आए, आयत जो है वो लिखी हुई भी, उसका तर्जमा भी आ जाए, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जहन के अंदर इसका एक जो है उनवान तजवीज करें, तो ये कुरान मजीद को समझने का बहुत बेहतरीन तरीका है, तो इसके कई उनवानात हो सकते, और एक उनवान जो है तो इस सारे सूरत हाल को जो सामने आपके कवर करेगा वो ये है कि आखिरत की हाजिरी का ये एक मंजर है, अगरचे जो है इसके सब टॉपिक्स में तो ये हो सकता है कि कौन उस वक्त क्या कह रहा है, लेकिन मजमूरी तौर पर ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि ये आखिरत की हाजिरी का एक जो है मंजर है, जब तमाम लोग जो है वो इंसान अल्लाह ताला की अदालत में हाजिर होंगे, दुनिया के तमाम गैब और रसूलों की बात बताई हुई तमाम बातें जो रसूल बताया करते थे दुनिया के अंदर, वो सारे सामने आएंगे, सामने आ जाएगी, हकीकत आशकार हो जाएगी, तो दुनिया में बगैर सोचे समझे जो लीडरों की अंधी पैरवी करने वाले थे, और फिर उन लीडरों के दरमियान में तकरार और झगड़ा जो होगा, और ये एक दूसरे पर लान तान करेंगे, और आप यकीन कीजिए कि आप इसको जो है हम पढ़ते भी आ रहे हैं, और दूसरे कुरान मजीद के अंदर भी इस झगड़े का, इस तकरार का, एक दूसरे पे एक ऊपर लान तान का ये जो मंजर है कुरान मजीद में सूरह मोमिन के अंदर भी बयान हुआ है, सूरह सबा के अंदर भी बयान हुआ है, सूरह आराफ के अंदर भी हम इसको जो है पढ़ चुके हैं, कई मकाम पर इसकी मंजर कशी की गई है, और यकीनी तौर पर ये होने वाला है, तो इन अंधी पैरी करने वालों को कुरान मजीद ने दुआफा कहा, जईफ लोग कहा, और जईफ लोग क्यों कहा है, ये ऐसा नहीं है कि जिस्मानी तौर पर जईफ होंगे, बल्कि इनके बेअकल जाहिल और कमजोर फहम होने की दलालत है, इन ये दुनिया के अंदर ये देख ही नहीं सके कि ये जो आगे हमारे चलने वाला जो हमें आगे चला रहा है, जिसके पीछे हम नारे लगा रहे हैं, ये किस कदर ये हमें धोखा दे रहा है, इसके पास क्या हकीकत है, और इसको जो है इस हकीकत को परखने के लिए ये लोग बड़े कमजोर लोग, इन्होंने अकल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने फहम का इस्तेमाल नहीं किया, अपने इल्म का इस्तेमाल नहीं किया, और ये अंधाधुंध और बगैर जिए के और बगैर अकल के इस्तेमाल किए और बगैर अल्लाह ताला ने जो इल्म और अकल दिया है उसके इस्तेमाल किए बगैर उनके पीछे जो है वो चल पड़े। इस बुनियाद पर कुरान मजीद ने इनको अदाफा दी वीक कीपर जो है वो करार दिया, और इसके मुकाबिल किरदार जो है वो जो है उसको कुरान मजीद ने लिल्लज़ीन अस्तकबरू, वो लोग जो बड़े बनेंगे थे, जो आगे, अब बड़े से मुराद वो है जो लीडर है, जो माला है, जो सरदार है, जो जो है कोई प्रोहत है, कोई शेख है, कोई पीर है, कोई जो है वो क्लर्गी मैन, कोई जो है वो पादरी है, कोई भी है वो बना हुआ है, इसके सबके ऊपर इसका जो है इतलाक होता है, ये प्रोहत, पादरी, पीर, फिरकों के बानी, हुक्मरान, लीडर्स, ये जो है सारे के सारे इसके ऊपर लिल्लज़ीन कुरान मजीद ने सिर्फ एक नहीं कहा कि सिर्फ एक सरदार, बल्कि वो लोग जो बड़े बने हुए थे, और इस बड़े होने का इतलाक जो वो तमाम लोग जिनके पीछे, जिनकी कुछ जमीयत, कुछ लोगों की उनके पीछे चलने वाली है, तो उन तमाम लोगों को फिर जो है वो इस्तकबरू कहा गया, वो लोग जो बड़े बने हुए थे, और फिर वो जो ऐसे लोग हैं इनके पीछे अवाम का लना जो है वो बिल्कुल ही जो सोचते नहीं है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, और वो हक से भी, अगर वो हक का मामला है तो हक से बेबहरा उनके पीछे जो वो चल पड़ते हैं, उसके नतीजे जो वो भुगतेंगे। ये एक बड़ी जबरदस्त तंबीह है उन लोगों के लिए जो अपने कौमी, खानदानी, माशरती रस्म रिवाजों के बंधनों में, या फिर जाति और पसंद और नापसंद को अपनी मजबूरी और कमजोरी बनाकर एक हुज्जत करार देते हैं, और ऐसे बड़ों के पीछे चलने को चलने करते हैं कि भाई देखिए हम तो, अब प्रॉब्लम मसला ये है कि पूरा खानदान इसको सपोर्ट कर रहा है, या फिर अब मैं जो है मुझे ये बंदा पसंद है बड़ा, इसलिए जो है ये उसकी बुनियाद पे मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, कोई और वजह नहीं है चलने की, तो ये वजह चल रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है बगैर देखे कि इनको ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लोग इनके पीछे चलेंगे, ये जयीफ लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि आज जो तुम्हारे लीडर और पेशवा और अफसर और हाकिम बने हुए हैं, कल इनमें से कोई भी तुम्हें खुदा के अजाब से जरा बराबर भी नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला आज बता रहा है कि ये कयामत के रोज झगड़ा करें एक दूसरे के ऊपर जो है वो लानत करेंगे, यही मुस्तकबरीन जो है बड़े अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, हम तो खुद गुमराह थे, तुम्हें कैसे हिदायत देते, तुमने कभी नहीं देखा हमारा चाल चलन, कभी नहीं देखा कि हम खुदा के रास्ते पर नहीं है, कभी नहीं देखा कि हम लोगों को हिदायत जो है की तरफ और कुरान की तरफ और दीन की तरफ और इस तरफ चलने की कुछ हिदायत नहीं कर सकते, न कभी की है। अगर तुम फिर भी अगर जो हमारे पीछे चलते रहे हो, तो फिर आज जो है हमें मलामत मत करो, बल्कि आज जो है वो आगे कुरान अगली आयत के अंदर आ रहा है कि फिर आज मलामत करो, आज हमारे लिए बराबर है, तुम और हम दोनों को हम अजाब होगा, हम जो है जजा फजा करें, बावीला करें, शोर करें, ये सबर करें, आज एक बराबर है हमारे लिए। वकाल शैतानों, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ सीन है बाय द वे, शैतान कहेगा लम्मा खुदी अल अम्र, लम्मा लम्मा जब भी, वेन एवर, जब भी वेन खुदिया, चुका दिया जाएगा, फैसला कर दिया अल अम्र, अम्र का यानी तमाम लोगों के मामला का जब फैसला कर दिया जाएगा, इन अल्लाह वादकुम, इन अल्लाह बेशक वो कहेगा वादकुम, अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ, वादल हक, हक सा सच्चा वादा था, बिल्कुल अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ सच्चा, तुमने खुद ईमान यकीन नहीं किया अल्लाह के वादे पर, ववादतुकुम, और मैंने भी तुमसे वादा किया था, अखलफतुकुम, पस अखलफा जो है खिलाफ करना, तो फिर जो है खिलाफवर्जी की मैंने, अखलफ फिर तो मैंने खिलाफवर्जी की तो तुम्हारे साथ, उस वादे की मैंने तुम्हारे साथ खिलाफवर्जी की, व मा काना, और नहीं था ली मेरे लिए, अलैकुम मेरे लिए मुमकिन नहीं था, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये मेरी ताकत और इख्तियार में नहीं था, अलैकुम तुम्हारे, तुम पर मिन सुल्तान, कोई भी कुदरत, कोई भी ताकत, कोई भी अख्तियार, यानी मेरे तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कोई जोर अख्तियार नहीं था, मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ के, तुम्हें गर्दन से पकड़ के अपने पीछे नहीं चलाया, इल्ला मगर अन के दाऊतुकुम, मैंने तुम्हें दावत दी, मैंने तुम्हें बुलाया जो है, फस्त फस्त जब तुम, पास इस तजब तुम्हें आगे है, इस तजब इस तजावा से है कि तुमने फिर दावत कबूल कर ली। इस तजावा यस तजीबो इस तजावत, तजावत जो इसी से मुस्तजाब है, मान लेना कबूल कर लेना। इस तजावत मतलब इस्तेमाल होता है यही जो जो यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है जो मस्तर, तो कबूल कर ली तुमने मेरी दावत। फला तलूमूनी, वो आ गया बोला फला, पस ना तुम मुझे मलामत करो। ये देखे, ये कुरान मजीद में पहले भी आ चुके, कुछ पढ़ चुके हैं, फिर से देख रहे थे। ये इसका जो मादा है लाम वाओ, लामीम वाओ है, लामा जलूमो लोमन, ये मलामत करना जो है इसी से लफ्ज, मलामत भी इसी से निकले हुए लफ्ज है उर्दू का। उर्दू में लोम भी इस्तेमाल होता है, मलामत भी इस्तेमाल होता है, दोनों लाए मुसू से है मलामत करने वाला, और मलामत भी इसी से निकले हुए लफ्ज है। तो कुरान मजीद की इस्तेलाह है लोमत लाइम, मलामत करने वाले की मलामत, ये कुरान मजीद में आया है ये लफ्ज। तो ये पूरा इस्तेमाल, तो तलूमुनी तलूमुनी तुम मलामत करो, ला पहले आ गया है, ना तुम मुझे मलामत करो। वलूमू बल्कि, वलू बल्कि मलामत करो, बलूमू और मलामत करो अनफुसकुम अपने आप। वमा अना, और मैं नहीं हूं, बेमुस्रख आहे एक लफ्ज और कुम अलग है, बेमुस्रख कुम, और नहीं हूं मैं फरियाद रसी करने वाला तुम्हारी। ये जो जो सरखा है लफ्ज जो है, सरखा का मतलब तो होता है चीखना, ठीक है। असरखा जो होता है बाबे फाल होता है किसी की मदद के लिए चीखना, किसी की पुकारना मदद के लिए, फरियाद रसी के लिए पुकारना जो है वो असरखा। तो मैं यानी आज चीखने वाला नहीं हूं तुम्हारी मदद के लिए, वो ये कहेगा मुसरिख मदद फरियाद रसी करने वाला, मैं तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं हूं। वमा अंतुम, और नहीं हो तुम, बेमुसरखी फरियाद रसी करने वाले मेरी, मुसरखी है आगे, मेरी फरियाद रसी करने वाले नहीं हो। इन्नी बेशक बिलाशुबा कफर, तो मैंने जो है वो मैं इनकार करता हूँ, कफर कफर ये वो है जो इनकार करता हूँ, मैं कफर तो मैं इनकार करता हूँ, बेमा उस चीज की जो अशरक तुमूनी मिन कबलो, ये अशरक तुमूनी था, तुमने शिरक किया, शरीक करते रहे हो मुझे, बनाते रहे हो, मिन कबलो इससे पहले तुम शरीक करते रहे हो जो है इससे पहले मुझे, अशरक दूसरे को शराक शरीक बनाना, शिरक करना। इन जालिमीन, बेशक जालिम लोग, तो हम उनके लिए है अजाबुल अलीम, सख्त अजाब।
और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लबैक कहा। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बनाए रखा था। मैं इससे बरी जिम्मा हूँ, ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक सजा यकीनी है।
अब इस आयत, ये जो आयत आयत है थोड़ी सी लंबी आयत है, और इस आयत का जो आप उन्वान तजवीज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये शैतान का बुनियादी तौर पर हशर के मैदान में जो है वो इतराफ है। तो तमाम बनी इंसान का जब ये फैसला हो जाएगा कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नम में जाएगा, तो फिर जो है बेशुमार लोग जिन्होंने शैतान के वादों और सब बागों पर अपनी दुनिया की जिंदगी की बुनियाद रखी होगी और उसके रास्ते पर वो चलते रहे होंगे, शैतान के वादों की जिंदगी की तामीर ये है कि इंसान हक को नजरअंदाज करे, इल्म यकीन और अमल से खाली गैर हकीकी बुनियादों के ऊपर जो है वो वहम के ऊपर और जो है वो विम्स विम्स के ऊपर जो अपनी जिंदगी गुजारे, फिर इन खुद साख्ता मफरूजों के तहत ये उम्मीद भी कायम कर ले कि उसकी जो है निजात हो जाएगी। तो ये शैतान के वादों पे जो है वो जिंदगी की तामीर है और बिल्कुल खोखली तामीर है। फैसला हो जाने के बाद फिर जो है कयामत की इस घड़ी पे लोग जो है करेंगे और रिकॉल करेंगे कि शैतान ने हमें ये और ये कहा गा, ये इस तरीके से किया था, तो वो शैतान पर लानत करना चाहेंगे। तो शैतान पहले ही प्रियम करके जो है लोगों को, तो दूसरी जगहों पे एक उनके झगड़ा भी होगा, यहाँ पे माया गया कि शैतान जो है लोगों को जो है वो खुद ही अब खुद जो है वो चुप कराने की कोशिश करेगा और उनसे कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किए थे वो सारे सच्चे थे और पूरे हुए, और जो मैंने वादे किए थे वो सारे के सारे जो है झूठे थे और झूठे निकले। मैं मानता हूं कि जो भरोसे मैंने तुम्हें दिलाए थे वो सारे के सारे वो सब लालच थे और वो दुनियावी फायदे थे, और जिन खुशनुमा तवक्कुआत के जाल में मैंने तुमको फांसा था वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल झूठ था, मैं इससे घोसला थे। और जो है वो मैं तुम्हें बता वहां वहां पे तो मैं बस जो है तुम्हें ये बताता था कि कोई बात नहीं है, फुला हजरत और फुला हजरत जो है उनके वो तुम उनके दामन से वाबस्ता हो, वो तुम्हें जो है सब बचा लेंगे और उनकी खिदमत में नजरों न्याज पेश करते रहे और फिर जो चाहे करते फिरो, निजात का जिम्मा उनका है। ये सारी बातें जो मैं तुमसे कहता रहा हूँ अब या अपने एजेंटों के जरिए से कहलवाता रहा हूँ, ये मैं धोखा था, और आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों शैतान किस तरह के एजेंट जो है ये बात इस तरह की जो है दुनिया में बताते हैं। अल्लाह ताला के सारे काम तुम्हारे साथ थे, सामने थे, उसके सारे रास्ते के निशानात तुम्हारे सामने थे, अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके पैरों ने और उनके जो है सालिहीन लोगों ने, सारे लोगों ने और नेक लोगों ने इस रास्ते तुम्हें जो है वाजे कर दिए थे, तो इससे रूगरदानी तुमने खुद करके खुद मेरा रास्ता जो चुना था। मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी और तुमने उसके पीछे जो लपै कहा, तो फिर आज मुझे मलामत ना करो, मैंने जबरदस्ती नहीं की, मेरे पास कोई जोर नहीं था ना कोई हुकूमत नहीं थी, एक बस दावत था, बुलाया था मैंने तुम्हें, तुमने उसके पीछे जो है वो लपै कहा। मैं आज तुम्हारी कुछ भी मैं भी तुम्हारी तरह बेबाज हूँ, कुछ तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं हूँ। अब दर हकीकत शैतान जुर्म का जो इतराफ करेगा वो की नई बात नहीं है, ये इंसान की सादगी है कि उसको जुर्म को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर आज आप मतलब गौर से देखें तो आपको जा बजा शैतान की यही रविश नजर आएगी, वो एक निकम्मे और नखुटी नौजवान जो है उसको राजनी के लिए और नकबजनी के लिए और रातों रात अमीर होने के तरह तरह के जो है वो प्लान उनको जो है बना देता रहता है, तरकीबें देता रहता है और ऐसा नक्शा उनके सामने खींचता है कि वो अपनी जिंदगी के नस्कुलैन जो है यही बना लेते हैं, ये शॉर्टकट्स जो है। लेकिन जब उस जुर्म में पकड़ा जाता है शैतान उसकी मदद क्या करेगा, वो तो खुद जो है दूर खड़ा देख मुस्कुरा रहा होता है कि जो है किस तरीके से जो है मैंने इनको फांस लाया है और बुराए रास्ते हटाया है और उनको जो है वो सबक बाग दिखाता रहा है, तो वो फिर जो है इनकी किसी किस्म की कोई मदद को नहीं आ सकता। जो लोग भी अल्लाह ताला की बंदगी उसके फरमाबरदारी का रास्ता छोड़कर ये रास्ता कोशिश का अख्तियार करते हैं, वो दर हकीकत अपने आप को फिर इस अंजाम कार का जो है मुस्तहिक बनाते हैं, जिसके बारे में तो बताया कि अल्लाह ताला क्या उनके अजाब अलीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अजाब से और इस अंजाम से महफूज फरमाए। इस आखिरी आयत है उदखिलल्लज़ीन आमनू उदखिलल्लज़ीन और दाखिल किए जाएंगे, उदखिला दाखिल किए जाएंगे लज़ीन वो लोग आमनू जो ईमान लाए, इन्हीं ये कंट्रास्ट है, वामिरु सालिहात जिन्होंने नेक अमल किए, जन्नातिन तजरी ऐसी जन्नतों में जारी हैं, मिन तहतेहा जिनके नीचे अलहार नहरें, उनके नीचे उन बागों बाग में उनको दाखिल किया जाएगा। खालिदीना वो रहने वाले हैं, फीहा उनके अंदर हमेशा हमेशा, यानी वो रहने वाले हैं खालिद हमेशा रहने वाला, बेइज्ने रब्बिहिम अपने रब के इज़्ज़त से, तहियतुहुम जो है उनके लिए तहियत दुआ होगी, फीहा उनकी होगी, फीहा उनमें उन बाघों में जन्नतों में उनकी दुआ होगी, हज्जा जो है जी तहैयतन दुआ देना, दराजी उम्र की दुआ देना, ये हय्यत तो नसे हय्यत जिंदगी होता है, जिंदगी की लंबी जिंदगी की दुआ देना बाब तफील है, ये दुआ मुलाकात है, दुआ खैर बरकत है, इस्तेकाम की दुआ है। और अरब लोग जो है इस्लाम से पहले यही दुआ हज्जा कहते थे, उसी से तहैयात है, इन सलाम और दुआ ग्रीटिंग्स जो है उर्दू में ये आम है, तहैयात के मैंने ये सलाम करना, सलाम वालेकुम कहना, अब ये शरीयत की इस्तलाह है। कुरान मजीद ने दूसरी जगह हम पढ़ा है पीछे सूरह जो है वो निसा के अंदर, वैदा हुजी तुम बेतहियत फैजू बेहसन मिनहा और उर्दूहा, जब तुम्हें कोई इत्राम के साथ सलाम करे तो उसे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, तो मैं उनकी दुआ होगी क्या सलाम सलामती होगी उनकी दुआ होगी।
बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे और वहाँ उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से हो।
जी जजाकल्ला, ये अहले ईमान का अंजाम होगा, वो दो जन्नतों के अंदर जो है वो एक दूसरे को आलन व सालन मरहबा कहेंगे, और सलाम और रहमत की जो है वो सदाएं होंगी उनके लिए, उसमें जन्नत की जिंदगी गुजारेंगे। और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर ईमान और अमले साले का रास्ता अख्तियार किया। ये जान लेना चाहिए कि ये किन लोगों को मिलेगी जन्नत। अल्लाह ताला उसके रसूल और आखिरत पर ईमान लाए और हर उस बुनियादी अकीदे को माने जिसे मानने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर चले, अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की बजाय अल्लाह ताला की रजा को जो अपना मकसद जाना, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को अपना आइडियल और अपना महबूब समझा, और दुनिया की हजारों तरगीबात शैतान की और दूसरी टेम्पटेशन जो दुनिया के अंदर मौजूद है उसके बावजूद इस्लामी शरीयत से जरा बराबर भी एक जो है बाल बराबर की हिफाजत सामना किया। इनके लिए क्यामत के दिन महल्लात होंगे जो बागों में घिरे होंगे, उनके नीचे नदियां बहती होंगी, और वो वहां पे चंद रोज के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जो है वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, और अल्लाह ताला के खुसूसी मेहमान होंगे, अल्लाह ताला की खुसूसी उनकी नेमतें होंगी, और इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी जो है वो एक दूसरे के दिलों के अंदर उनके लिए जो एक दूसरों के लिए दुआएं होंगी सलामती की, दराजी उम्र की, जब भी एक दूसरे को देखेंगे तो बेसाख्ता एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला से सलामती की दरख्वास्त जो दरख्वास्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करना, हमारा अल्लाह जल्ला अमीन अमीन आमीन। अजीज भाइयों ये एक मौका था कि देखें कि तहिया जो है सलाम कहना, और जो है सलाम जन्नत के लोगों का सलाम जो होगा दिया अलैहि सलाम, कुरान मजीद में जो है बेशुमार सलाम की अहमियत और फजीलत है, तो इससे एक पूरा जमीमा जो है इसमें शामिल है, और इस जमीमे के अंदर सलाम के मानी और मफहूम, सलाम इस्लाम तहजीब का एक शुआर के तौर पर, इस्लाम का मवाजना, सलाम का मवाजना जो है दीगर तरीका है सलाम से जो दीगर मजाहब और सकाफतों में है, सलाम की अहमियत और फजीलत कुरान करीम के अंदर, सलाम की अहमियत और फजीलत हदीस मुबारक के अंदर, फिर सलाम के जो आदाब और मसाइल हैं कुछ जो है तौर पर वो जो है इसमें बयान किए गए, और कुछ मुतफरकात सलाम से मुतलिक इसमें शामिल की गए, ये सारे का सारा जमीन इसमें शामिल है। हम इसमें अभी नहीं देखेंगे लेकिन ये आपके लिए जो है कई होमवर्क है, तो आप इंशाल्लाह इसको जो है वो देखिएगा, और इसको देख और ये इसलिए भी शामिल किया जाता है आपके लिए कि आप यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद के साथ पढ़ने और पढ़ाने के लिए जोड़ा है, तो आप आगे जब भी पढ़ाएं कुरान मजीद को तो ये सारे जो अगर आप सलाम के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर आप जो है आगे दर्स देना चाहें तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस के साथ हदीस कुरान मजीद के तमाम देखें आप, और ये हदीस मुबारक के रेफरेंस के हैं सारे प्रॉपर, और पूरे जो है आपके लिए एक तसहील की गई, आसानी की गई है, एक पूरे का पूरा जो है वो सलाम के ऊपर दर्स मौजूद है, आप इससे जो है वो फायदा उठा के आप आगे दर्स दे सकते हैं, और ये रेफरेंस भी है, तो इसलिए जो है आप इसको खुद देखिएगा पढ़िएगा से फायदा उठाइए और आगे भी फैलाइए, और थोड़ा सा भी जो भी आपको अल्लाह ताला ने जो है जो भी फहम बख्शा है ज्यादा या कम जितना भी, तो आगे इसको जो है बताइए अपने अपने घर वालों को, बेटे बेटी अपने बीवी दूसरे घर वाले आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार ऑफिस कुलीग्स कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, तो देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो कुरान की तबजीन और नबी कसम फरमाया कि मुझसे आगे बयान करो चाहे तुम्हें आगे एक आयत की आती हो, बल्ले हो बोलो अन्नी आया, अगर ये भी तुम्हें आती है एक आयत आगे पे, तो ये जो फरीजा है उससे हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो ओहदा बरा हो सके इस फरीजे से, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह क़यामत के रोज ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों को, अपने पढ़ाने वालों को, अमल करने वालों को, और जिन लोग जो इसके साथ दुनिया में बढ़ते हैं उनके लिए ये क़यामत में जो है शाफे होगा, शफी होगा, ये शफात करेगा। ने ये भी बताया आपने कि इसकी शफात जो है वो मुस्तजाब होगी, मकबूल होगी और कबूल की जाएगी, अल्लाह ताला जो कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जोड़े, और इस दुनिया के अंदर भी और कब्र की वहशतों के अंदर भी हमारा साथी हो, और मैशर के अंदर भी हमारा रहनुमा हो, और हमारा शाफे हो, और हमें जो रहनुमाई करता हुआ जन्नत के अंदर ले जाए। आमीन। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله